Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये बात ठीक है कि माया का जन्म नहीं हुआ है, माया को किसी ने पैदा नहीं हुआ है, लेकिन त्रिगुणात्मिका माया वो अचानक अस्तित्व में आ जाती है, दिखाई पड़ती है, और जब वो अस्तित्व में आ जाता है तब फिर उससे सारा कार्य शुरू हो जाता है। मानते तो वेदांती भी माया को त्रिगुणात्मिका ही है, उन्होंने माया कह दिया और सांख्यों ने प्रकृति कह दी। सांख्यों की प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है, वेदांतियों के जो माया है वो भी त्रिगुणात्मिका है। वेदांती उसको प्रकृति इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि प्रकृति शब्द से उसको नित्य मानना पड़ेगा, इसलिए प्रकृति शब्द प्रयोग न करके माया शब्द प्रयोग कर देते हैं। माया शब्द का जो व्युत्पत्ति है, अर्थ है, उसका अर्थ ही यही है कि वह स्वयं में नहीं है। स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व वाला जो न हो उसको माया कहते हैं। तो माया यदि है त्रिगुणात्मिका तो अपने अस्तित्व में नहीं है, परमात्मा की ही अस्तित्व में है। उसके अस्तित्व को लेकर माया अपने अस्तित्व प्रकट करती है और उस परमात्मा के अस्तित्व में अपना अस्तित्व दिखाकर वो सारे जगत की रचना करती है। जब उस माया त्रिगुणात्मिका माया में से जो उस माया का अस्तित्व है उस अस्तित्व को अलग कर दिया जाता है तब वो अस्तित्व परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। तब अस्तित्व माया से अलग हो गया तब फिर माया खुद में कुछ भी नहीं रहे। उदाहरण के रूप में आप समझ लो, आप जिन वस्त्रों को धारण कर रखे हो, ये जो कपड़ा है जिसको साड़ी कहो या जिसको कमीज कहो, शर्ट कहो, पैंट कहो, जो कुछ भी आप कपड़े का जो कुछ संज्ञा आप देते हो, ये कपड़ा खुद में नहीं है। ये कपड़ा खुद में नहीं है, अपने अस्तित्व में नहीं है ये कपड़ा। ये तो धागे के अस्तित्व को लेकर अपना अस्तित्व प्रकट किया हुआ है। आपके शरीर को ढकने लायक बना है ये कपड़ा, तो ये कपड़ा खुद में कपड़ा नहीं है, धागे के अस्तित्व को लेकर वह कपड़ा संज्ञा हो गया है, कपड़ा के रूप में प्रकट हो गया है और आपके व्यवहार अंग ढांकने का काम कर रहा है। ये कपड़ा के बारीकी से आप यदि छानबीन शुरू करो, ये कपड़े के जो अपना अस्तित्व क्या है करके आप खोज करो, छानबीन करो, तो उसमें से जब धागों को अलग कर देते हो तो कपड़े का अस्तित्व रहता ही नहीं है। कपड़े का अस्तित्व फिर रहेगा ही नहीं, धागे को जब छानबीन करोगे, कपड़ा और कपड़े में से धागा दोनों को अलग करोगे तो फिर कपड़ा का अस्तित्व नहीं रहेगा। आज कपड़े का जो अस्तित्व है, कपड़ा है कह रहे हो, ये कपड़े के अस्तित्व में मूल कारण धागा है, कपड़ा है ही नहीं, न होने पर भी कपड़ा दिख रहा है, यही माया का स्वरूप है। अब इससे और आगे चले जाओ, धागे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, धागा अपने अस्तित्व दिखाने के लिए कपास के अस्तित्व को ले रखा है, कपास के अस्तित्व को लेकर धागा अपना अस्तित्व दिखा रहा है और व्यवहार का विषय बन रहा है धागा। धागा वास्तव में क्या है, इस धागे के अस्तित्व क्या है करके जब धागे का छानबीन शुरू करते हैं तब फिर उन धागों में से सारे कपास के जो रेशाएं हैं उनको अलग कर देते हैं तब फिर धागा अस्तित्व में नहीं रहता। तो माया शब्द का अर्थ ठीक यही है। कई बार इस माया शब्द का अर्थ न समझने के कारण बहुत लोगों को परेशानी होती है, कहते हैं माया है नहीं, जो है नहीं फिर उसको क्यों मानते हो? तो तुम जब मान रहे हो तो हम क्यों नहीं माने? कपड़ा है ही नहीं फिर भी कपड़ा क्यों मान रहे हो? कपड़ा है तो फिर अलग कपड़े को दिखाओ हमको, है? कपड़ा है कहते हो तो दिखाओ उस कपड़े को, दिखाना चाहिए। तो हम ये खोजी करेंगे, तलाश करेंगे कि कपड़े का अस्तित्व किस रूप में, कैसे कपड़ा वास्तव में होकर कपड़ा है कि कपड़ा बिना हुए ही कपड़ा है, है? कपड़ा वास्तव में होकर कपड़ा है कि कपड़ा बिना हुए ही कपड़ा है? कपड़ा यदि वास्तव में होता तो धागे को अलग करने पर भी रहता, तब तो वहां दो चीज सिद्ध होना चाहिए कि नहीं, एक कपड़ा दूसरा धागा। तो ये क्या दो चीज तुम सिद्ध कर पाओगे, एक कपड़ा अलग और दूसरे धागा अलग, ये दो के स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध कर पाओगे? दो चीज अलग होते तब हम कहते, मिट्टी अलग और घर अलग, क्या ये दो वस्तु अलग अलग हैं? मिट्टी अलग घड़ा अलग, ये दो वस्तु अलग अलग हैं? इन दोनों के अस्तित्व सिद्ध कर पाओगे? अलग अलग अस्तित्व सिद्ध कर पाओगे? महाराज ये मिट्टी है और ये घड़ा है, ये दोनों के अस्तित्व को अलग अलग कर पाओगे? जब आप घड़े की जो छानबीन शुरू करोगे कि घड़ा बना तो कैसे बना, घड़ा का अस्तित्व है तो कैसे है, तब जब घड़े के बारे में हम अनुसंधान करते हैं, छानबीन करते हैं, और घड़े में विद्यमान जो मृत्तिका है उसको जब अलग करते हैं तो फिर घड़ा क्या सिद्ध होगा? और घड़ा स्वयं में कुछ भी नहीं है फिर भी सब प्रतीत हो रहा है, और आपके पानी भरने में काम आ रहा है, पानी ठंडा भी कर रहा है, लेन देन का सारा व्यवहार बन रहा है, ये सब का व्यवहार का कारण जो घड़ा है, वो घड़ा स्वयं में क्या है? जब अनुसंधान नहीं करते हैं तो घड़ा स्वतंत्र सिद्ध होता है, अनुसंधान करते हैं तो घड़ा स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार से वेदांत के प्रक्रिया से माया का जब हम अनुसंधान करने जाते हैं तो माया का कोई अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जब चुपचाप अनुसंधान किए बिना बैठते हैं तो माया स्वीकार कर लेते हैं, फिर माया सब काम करती है, अनुसंधान करते हैं तो माया का अस्तित्व सिद्ध होता ही नहीं है, फिर किसका अस्तित्व सिद्ध होता है? तो एक ही ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। कपड़े का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो किसका अस्तित्व सिद्ध होगा? धागे का, एक धागे का अस्तित्व सिद्ध होगा, कपड़े का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। धागे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो किसका अस्तित्व सिद्ध होगा? एक कपास का अस्तित्व सिद्ध होगा, कपास के अस्तित्व के अलावा स्वतंत्र धागे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तब फिर हम धागे को क्या कहेंगे? माया कहेंगे। तब फिर हम कपड़े को क्या कहेंगे? माया कहेंगे। तब फिर हम कपास को क्या कहेंगे? कपास का छानबीन करना शुरू करेंगे तो कपास का कोई अस्तित्व नहीं होगा, फिर किसका अस्तित्व होगा? मिट्टी का। ये आखिर एक अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, वो एक अस्तित्व का नाम ही है ब्रह्म, उस एक अस्तित्व का नाम ही है परमात्मा। तो मूल में एक है जो अनेक हैं, केवल उस मूल एक के माया का खेल है। माया का माने जो नहीं है उस एक अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है। कपड़ा जो नहीं है वो धागे के अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है, धागा जो नहीं है वह कपास के अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है, कपास खुद जो नहीं है वह मिट्टी के अस्तित्व में प्रकट हो रहा है, मिट्टी खुद नहीं है पानी के अस्तित्व में प्रकट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, पानी खुद नहीं है तेज के अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है, तेज खुद कुछ भी नहीं है वायु के अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है, वायु खुद कुछ नहीं है तब फिर आकाश के अस्तित्व में प्रतीत हो रहा है, आकाश खुद में कुछ नहीं है तब फिर वह महतत्व के अहंकार के अस्तित्व में प्रकट हो रहा है, त्रिविध अहंकार के अस्तित्व में प्रकट हो रहा है, त्रिविध अहंकार खुद में कुछ भी नहीं है तब फिर वह अव्यक्त महातत्व में प्रकट हो रहा है, महातत्व खुद नहीं, वो माया में अव्यक्त प्रकृति में प्रतीत हो रहा है, अव्यक्त प्रकृति खुद नहीं है, वह फिर ब्रह्म कूटस्थ अधिष्ठान में प्रतीत हो रहा है। तब इसी तरह ब्रह्म भी कुछ नहीं है कह दो फिर, तो हम कहेंगे कि ब्रह्म यदि कुछ नहीं है तो वह कहां प्रतीत हो रहा है, अधिष्ठान बता दो, हम बता देंगे कि ब्रह्म भी कुछ नहीं है, तो कोई अधिष्ठान तो बताना पड़ेगा ना। कल्पना निराधिष्ठान नहीं होता, कल्पना निराधिष्ठान नहीं होता, अध्यारोप निराधिष्ठान नहीं होता। जो भी कल्पना है वो कल्पना का एक आधार होना चाहिए, वो आधार का नाम है माया, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा खड़ा किए हुए सारा का सारा जगत कल्पना का आधार माया से असंग एक अधिष्ठान है, वो तत्व एक है, उसी को वेदांत ने उपनिषदों ने ब्रह्म कहा। हमारे वेदांत के प्रक्रिया में पंचीकरण की प्रक्रिया आप लोगों ने कई बार सुना है, विशेष करके पंचदशी कार विद्यारण्य मुनि जी उन्हें अपने पंचदशी में पंचीकरण की प्रक्रिया को रखा है। पंच जो सूक्ष्म महाभूत हैं, उन सूक्ष्म पंच महाभूतों को जब पंचीकरण कर देते हैं तब फिर वही स्थूल महाभूत बन जाता है, और जो स्थूल पंच महाभूत के द्वारा उसी भूत का विस्तार, ये विश्व प्रपंच, ये विराट ब्रह्मांड है। ये प्रक्रिया आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पंचीकरण की प्रक्रिया। लेकिन ये पंचीकरण की प्रक्रिया औपनिषद प्रक्रिया नहीं है, उपनिषदों में पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं आई है, ये पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती आचार्यों ने समझने के लिए ये पंचीकरण की प्रक्रिया ले आए। परंतु इस पंचीकरण का मूल सूत्र मूल आधार है त्रिवितकरण। अब आप ध्यान से सुन लेने, शास्त्रीय विषय आया है, त्रिवितकरण जो है वो औपनिषद प्रक्रिया है। छांदोग्य उपनिषद में भी त्रिवितकरण की बात आई है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी त्रिवितकरण की बात आई है, और ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये त्रिवितकरण की बात आई है। मूल तत्वों में एक ब्रह्म है, उसके बाद ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, उस माया का ही तीन गुणों का जो त्रिवितकरण है वही सारा विश्व ब्रह्मांड है। त्रिवितकरण माने तीन गुणों का चीर फाड़ ही त्रिवितकरण है, और बृहदारण्यक उपनिषद में इस त्रिवितकरण को ही तेज, आप और अन्न के रूप में लिया गया है। तेज माने जो अग्नि तत्व, तेज तत्व, दूसरा तत्व है अप माने जल तत्व, और तीसरा है अन्न। इसका मतलब ये हुआ कि तेज, पानी और पृथ्वी, अन्न का अर्थ कर दिया है पृथ्वी। और शास्त्रीय प्रक्रिया ये है कि तेज का रूप लोहित है, जल का रूप शुक्ल है, और पृथ्वी का रूप कृष्ण है। पृथ्वी स्वरूपतः काली है, पानी स्वरूपतः सफेद है, और तेज स्वरूपतः लाल है। इसी बात को कहा कि लोहित शुक्ल कृष्ण है, और इन्हीं का जो त्रिवितकरण है वो सारा विश्व ब्रह्मांड है। तेजो अपन्ना, ये चांदोग्य उपनिषद में भी इसकी प्रक्रिया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसकी प्रक्रिया है, और इसी का खेल है सारा विश्व ब्रह्मांड। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम, हम लोग तत्व को पढ़ते थे तो पानी को, पानी का जो गुण है वह अभास्वर शुक्ल रूप है, मधुर पानी का गुण है, रूप कैसा है तो बोले अभास्वर शुक्ल रूप। पृथ्वी का गुण कैसा है तो बोले सब गंध गुण है पृथ्वी का, रूप कैसा है तो बोले कृष्ण, लोहित शुक्ल कृष्ण। वह क्या करती है, पहले तो माया कैसी है, उसका नाम क्या है, तो बोले आजा। आजा ये नाम क्यों रखा उसको, तो बोले क्योंकि वह किसी से पैदा नहीं हुई है इसलिए उसका नाम आजा। कपड़े का नाम क्या है, आजा। कपड़ा पैदा हुआ है, बोलो। कपड़ा पैदा हुआ है, कपड़ा सिद्ध हो तो पैदा हुआ कहेंगे। धागा ही तिरछा और रखा गया, आड़ा और टेढ़ा रख दिया धागा, उससे कपड़ा दिखने लगा। धागे का खेल है कपड़ा, कपड़ा अलग पैदा नहीं हुआ है फिर भी कपड़ा है, यही तो कपड़े का नाम आजा, धागे का नाम आजा। धागा पैदा नहीं हुआ है, कपास के सभी रेशाओं को एक जगह मिला दिया तो धागा कहने लग गए, तो धागा पैदा नहीं हुआ, धागे का नाम आजा। तो सारा विश्व ब्रह्मांड का नाम आजा, क्योंकि इसकी मां पैदा नहीं हुई तो तुम पैदा हुए हो क्या? सारा विश्व ब्रह्मांड की जो मां है वही किसी से पैदा नहीं हुई है, तो सारा विश्व ब्रह्मांड पैदा होगा क्या? बोलो। ये बेटा है किसका, बोले इसकी मां पैदा नहीं हुई है, जिसकी मां पैदा नहीं हुई है उस मां का ये बेटा है, और कौन मानेगा उसको, बोलो है? अब यहां तो आश्चर्य की बात है, ना मां पैदा हुई है ना बाप पैदा हुआ है, मां भी पैदा नहीं हुई है बाप भी पैदा नहीं हुआ है, फिर भी सारा सृष्टि पैदा हो गया, यही तो आश्चर्य की बात है। अब इसको माया नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, इसी को अनिर्वचनीय नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सन्नाप्य सन्नाप्य वयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य वयात्मिकानो, सांगाप्य अनांगाप्य वयात्मिकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूपा। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में माया के स्वरूप को वर्णन करते हुए इस श्लोक से इस तरह कहा है, जिसको हम सत भी नहीं कह सकते हैं, जिसको असत भी नहीं कह सकते हैं, जिसको सत असत उभय रूप भी नहीं कह सकते। सत इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उसके बारे में जब अनुसंधान करते हैं तो स्वतंत्र अस्तित्व वाला सिद्ध नहीं होता, इसलिए हम उसको कैसे सत कहेंगे। असत इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे सब कुछ प्रतीत होता है, अनुसंधान नहीं करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे स्वीकार करते रहेंगे तो वह सब कुछ प्रतीत होता है, इसलिए उसको असत नहीं कह सकते। सारे व्यवहार का आधार बन रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्ता भोक्ता पुण्य पाप सब विश्व ब्रह्मांड सब कुछ खड़ा कर रहा है वो, इसलिए हम उसको असत नहीं कहेंगे। अब फिर ये सब कर रहा है तो कैसे ये कर रही है प्रकृति, इसका अनुसंधान करने जाएंगे तो इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं होता, अस्तित्व ही नहीं पता चलता है, तब फिर इसको सत भी नहीं कह सकते। तो ये क्या है, तो सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते। असत बंध्या के पुत्र की तरह नहीं है इसलिए असत नहीं कह सकते। ज्ञान होने के बाद खोजने जाओ तो इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता इसलिए सत नहीं कह सकते। तब फिर उभय रूप मान लो, सत और असत उभय रूप मान लो, तो ये तो विरोध है। सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा, सत असत दोनों रूप हो ही नहीं सकता है। कहीं भी कोई भी वस्तु में सत और असत, अस्तित्व और अनस्तित्व, भाव और अभाव एक ही साथ नहीं रह सकता। एक ही वस्तु एक ही साथ एक ही देश एक ही काल में भाव और अभाव उभय रूप हो सकता है, नहीं हो सकता। अनिर्वचनीय जो होगा वो सब कुछ हो सकता है, अन्यथा वस्तु में भाव और अभाव एक ही साथ नहीं रह सकता। भाव है तो अभाव नहीं है, अभाव है तो भाव नहीं है। इसलिए क्या कहा, अनिर्वचनीय रूपा। सन्नाप्य सन्नाप्य वे आत्मिकानो भिन्नाप्य अभिन्नाप्य वे आत्मिकानो माया परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? माया परमात्मा से अलग है कि परमात्मा से अभिन्न है? परमात्मा रूप ही है। माया को यदि परमात्मा से अलग मानोगे तो भिन्न मानोगे तो भिन्न उसकी प्रतीति होनी चाहिए। परमात्मा से भिन्न उसका अस्तित्व होना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। अब परमात्मा रूप ही है यदि माया को कहते हो तो माया फिर बाद होना चाहिए। माया बाद होगी तो परमात्मा रूप है तो परमात्मा ही बाधित हो जाएगा। परमात्मा बाधित हो जावे ये तो आप कोई भी नहीं चाहेगा, तो उससे अभिन्न भी नहीं भिन्न भी नहीं, तब दोनों एक ही रूप भी नहीं हो सकता है। भिन्नाप्य भिन्नाप्य भी आत्मी कानो वो सावयव है कि निरवयव है, तो उसको असावयव भी नहीं मान सकते निर्वयव भी नहीं मान सकते। सांगाप्यानांगाप्य वे आत्मिकानो फिर क्या है महाराज वो माया? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये यही है, कह नहीं सकते अनिर्वचनीय रूपा, इदम इत्थम करके माया का वर्णन नहीं कर सकते, इसीलिए वह अनिर्वचनीय रूप है। अनिर्वचनीय तो ब्रह्म भी है महाराज, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय रूप है, लेकिन ब्रह्म की सत्ता का कोई भी निषेध नहीं कर सकता। लेकिन माया के जो ब्रह्म के अनुसंधान करते हैं तो माया की सत्ता का अभाव हो जाता है। एक अनिर्वचनीय है बाधित अनिर्वचनीय है, दूसरा अबाधित अनिर्वचनीय है। ब्रह्म अनिर्वचनीय और माया अनिर्वचनीय में यही अंतर है कि माया बाधित अनिर्वचनीय है और ब्रह्म अबाधित अनिर्वचनीय है। माया और परमात्मा में यही अंतर है कि माया बाधित अजा है और परमात्मा अबाधित अजा है। अजन्मा तो माया भी है, अजन्मा तो परमात्मा भी है। परमात्मा का भी जन्म नहीं हुआ है और माया का भी जन्म नहीं हुआ है, फिर परमात्मा और माया में क्या अंतर रह गया भाई? एक ही अंतर है, अजन्मा होने पर भी माया का बाद हो जाता है और अजन्मा होने पर भी ब्रह्म का बाद नहीं होता, यही अंतर है। एक बाधित अजा, दूसरा अबाधित अजा। यहां तो तीन अज की बात आ रही है, एक प्रकृति अजा, दूसरा जीवात्मा अजा, तीसरा परमात्मा अजा। वास्तव में तीन व्यक्ति जन्मे नहीं है, माया का भी जन्म नहीं हुआ, जीवात्मा का भी जन्म नहीं हुआ और परमात्मा का भी जन्म नहीं हुआ। जीवात्मा का भी जन्म नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ जीवात्मा का जन्म भाई? क्योंकि अज परमात्मा और अज माया ये दोनों मिलकर उसको जो पैदा किया है, दोनों ही जन्म नहीं हुए हैं तो ये कहां से इसका जन्म होगा? जिस भी कार्य का उपादान कारण जैसा होता है कार्य वैसा ही होता है। तीसरा हो गया जीवात्मा, जीवात्मा को किसने पैदा किया महाराज, जीवात्मा कैसे खड़ा हुआ महाराज? तब जीवात्मा के बारे में जब हम अनुसंधान करते हैं है? तो जीवात्मा में दो का भाव जुड़कर जीवात्मा बना है, एक परमात्मा का भाव चैतन्य, दूसरा माया का भाव उपाधि। माया भी अजन्मा परमात्मा भी अजन्मा, दोनों अजन्मा अजन्मा मिलकर जो पैदा किया है वो क्या सजन्मा होगा? वो भी अजन्म ही होगा, न बाप पैदा हुआ है न मां पैदा हुई, तो बेटा कैसे रहेगा भाई? तो बेटा को पैदा हुआ कहा जाएगा? बाप भी पैदा नहीं हुआ मां भी पैदा नहीं हुई, ये दोनों मिलकर बेटे को पैदा किया है ऐसा कहा जाएगा? ये दोनों से सिद्ध हुआ जो जीव है वो भी अजन्मा। इस मंत्र में ये तीन अजों की बात आई है। एक अज हो गया प्रकृति, त्रिगुणात्मिका, लोहिता शुक्ल कृष्णम, भावी प्रजा सृजमाना सरूपा। वो प्रकृति अनेक प्रजा माने वस्तुओं को पैदा करती है, लेकिन कैसे बोले सरूपा प्रजा सृजमाना, अपने ही रूप वाले प्रजाओं को उत्पन्न करती है, अपने सराहा। अपने रूप वाले माने प्रकृति का तीन गुण है, अब उसका रूप तो सभी त्रिगुणात्मी के जगत, जीव जगत, चाहे वो अध्यात्म जगत हो, चाहे वो अधिदैव जगत हो, चाहे वो अधिभूत जगत हो, बात समझिए ना, चाहे वो घड़ा हो, चाहे वह घड़े को बनाने वाला कुम्हार हो, चाहे उस घड़े को प्रकाशित करने वाला सूर्य हो, क्या है ये तीन? क्या है? घड़ा अधिभूत है, घड़े को बनाने वाला कुम्हार या उस घड़े को खरीदने वाले ग्राहक अध्यात्म है, और उस घड़े को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है सूर्य आदि प्रकाश, वह अधिदैव है। अब अधिदैव जो सूर्य वो भी त्रिगुणात्मिका ही है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया से पैदा हुआ है, इसलिए वह भी त्रिगुणात्मिका है। और अध्यात्म रूप जो घड़ा खरीदने वाला या घड़ा बनाने वाला कुमार या ग्राहक, वो भी त्रिगुणात्मिका माया से पैदा हुआ होने के कारण वो भी त्रिगुणात्मिका ही है। और जो अधिभूत रूप जो घड़ा है, वो घड़ा भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा पैदा हुआ पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों में से 50% पृथ्वी, पृथ्वी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य है, इसलिए उस पृथ्वी से बना हुआ घड़ा भी त्रिगुणात्मिका है। ये तीनों अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, ये जो त्रिपुटी है, ये त्रिविध करण है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये जो उत्पन्न किया है, वो सब तीन गुण है, तीन रूप वाले हैं। शुद्ध सत्वगुण के चलते अधिदैव हो गए, प्रकृति में विद्यमान सत्वगुण की अधिकता के चलते जो भी पैदा हुए वो सब अधिदैव के कोटि में चले गए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति में विद्यमान रजोगुण के चलते जो भी पैदा हुए वो सब अध्यात्म में चले गए, अध्यात्म कोटि में चले गए। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के जो तमोगुण है, तमोगुण की अधिकता से जो भी वस्तु पैदा हुए वो सब अधिभूत में चले गए, और ये सब त्रिवितकरण हो गया। ये संसार में ये तीन वस्तु अस्तित्व में हैं, और इन तीनों वस्तुओं का अधिष्ठान के रूप में एक चौथा वस्तु है, जिसको हम तुरीय कहते हैं, वही ब्रह्म है। ब्रह्म अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में त्रिगुणात्मक का प्रकृति अध्यस्त है, उस अध्यस्त प्रकृति के द्वारा अपने त्रिगुणात्मिका जगत विश्व ब्रह्मांड की रचना। प्रकृति जहां अध्यस्त है वहीं जगत अध्यस्त है, प्रकृति का जो अधिष्ठान होगा वही जगत का भी अधिष्ठान होगा, क्योंकि जिस प्रकृति से जगत बना है, विचार करो, जिस धागे से जिस कपास से धागा बना, तो आप बताओ धागे का अधिष्ठान क्या होगा? कपास। जिस कपास से धागा बना तो उस धागे का अधिष्ठान हो गया कपास। तब उन धागों से जो कपड़े बने तो उन कपड़ों का अधिष्ठान क्या हुआ? कपास। सिद्ध हुआ कि नहीं बोलो? हाँ, दिखने में तो लगेगा कि उस कपड़े का अधिष्ठान धागा है, लेकिन मूल अधिष्ठान कौन हुआ? धागा भी स्वतंत्र सिद्ध न होने के कारण धागे का अधिष्ठान जो होगा वही कपड़े का भी अधिष्ठान होगा। इसी प्रकार के त्रिगुणात्मिका सारे विश्व माने माया का अधिष्ठान जब ब्रह्म है, तो तो उस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा पैदा किए हुए खड़ा किए हुए ये अधिदैव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अध्यात्म जीव आदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पशु पक्षी कीट पतंग आदि और अधिभूत पृथ्वी जल तेज वायु आदि ये सब के सब का अधिष्ठान तो वही एक है, ब्रह्मा है। इस मंत्र की और व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।